नमस्कार प्रिय श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दूसरा इतिहास नामक पुस्तक का अध्ययन विस्तार से कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आइए श्रोताओ, अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे योशिय्याह के राज्य में जागृति। प्रिय मित्रों, इतिहास की पुस्तक के इस अंतिम भाग में हम यहूदा में आए अंतिम धार्मिक सुधार जागृति को देखेंगे और इस समय योशिय्याह यहूदा में राज कर रहा है। यहूदा राज्य के इतिहास में 12 बजने के लिए 5 मिनट शेष रहते हैं, परंतु परमेश्वर फिर भी जागृति लाता है। बंधुआई से पूर्व यह अंतिम जागृति है। यहूदा सीमा रेखा के छोर पर पहुंच चुका है और यह अति विचित्र बात है कि उनमें धार्मिक जागृति आई, जो मनश्शे और आमोन के राज्यों के बाद की घटना है। मेरे मित्रों, इन दो राजाओं ने तो राष्ट्र को पूर्ण रूप से मूर्ति पूजा और पाप में मग्न कर दिया था। उस समय तो किसी ने भी यही सोचा होगा कि अब यहूदा के लिए कोई आशा नहीं, परंतु आशा कभी समाप्त नहीं होती है। पवित्र आत्मा जागृति के बारे में अपने प्रभुता प्रकट करता है। मैं नहीं जानता कि हमारे युग में जागृति आएगी या नहीं। मानवीय समझ के अनुसार कहें तो यहूदा राष्ट्र में जागृति की आशा ही नहीं थी, परंतु परमेश्वर का आत्मा प्रभुत्व संपन्न है और परमेश्वर काम करने में सक्षम है। वह आज भी काम कर सकता है। परमेश्वर के वचन में ऐसा कुछ नहीं जो इस संभावना का निराकरण न कर पाए। मेरे प्रियो, मुझे कभी किसी ने कहा, आप लोग जो भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं और भविष्य में आने वाले बुरे समय पर बल देते हैं, आपके साथ समस्या यह है कि आपके पास जागृति के लिए स्थान नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे विचार में उसके पास जागृति के लिए स्थान नहीं है। मेरे कहने का कारण यह है कि वह मनुष्य और उसका समूह स्वयं के प्रयासों से जागृति लाना चाहता है। मेरे मित्रों, आप इसका प्रयास नहीं कर सकते हैं और न ही प्रार्थना करके उसे रोक सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा प्रभु सत्ताधारी है। आज हमारी प्रार्थना यह होना है, हे प्रभु, मुझे परमेश्वर की इच्छा में स्थापित कर। जी हाँ, हमारी प्रमुख चिंता यह होना है कि हमारे जीवन परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हमारे जीवन जब तक उसकी दृष्टि में स्वीकार्य नहीं होंगे, तब तक हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं करा सकते हैं। हमें परमेश्वर के समक्ष अपने जीवन को उचित बनाना है। हमें स्वयं से ये प्रश्न पूछने होंगे, क्या मैं ईमानदार हूँ? क्या मैं सत्यनिष्ठ हूँ? क्या मैं शुद्ध हूँ? जागृति की चर्चा करना व्यर्थ है जब तक कि हम परमेश्वर के समक्ष अपने मन में उचित न हो। आज हम संसार में चारों तरफ देखते हैं भ्रष्टाचार के नारे हैं। आज हम हरेक को अपने जीवन में झांक करके देखने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के साथ उचित संबंध में होंगे, तब हम परमेश्वर के आत्मा की वाट जो सकते हैं कि वह अपने प्रभुता में कार्य करे और तब हम उससे कह सकते हैं कि वह अपनी इच्छा से काम करे। मेरे प्रियो, यहाँ हम योशिय्याह का जीवन देखेंगे कि परमेश्वर ने उसे अद्भुत रूप से काम में लिया। तो आइए हम देखें योशिय्याह के सुधार। दूसरे इतिहास के पुस्तक 34 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, जब योशिय्याह राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 21 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा उन्हीं पर वह भी चला करता था और उससे न तो दाहिने ओर मुड़ा और न बाईं ओर। मेरे मित्रों, आज आप देखते हैं कि मनुष्य पूछता है सही क्या है और गलत क्या है। योशिय्याह ने वही काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था। परमेश्वर जिस काम को कह दे कि सही है तो वह सही है, परंतु जिस काम को कह दे कि गलत है तो वह गलत है। मेरे मित्रों, स्मरण रखें कि परमेश्वर ने उज्याले को अंधकार से अलग किया। आप और मैं इसे नहीं कर सकते। हम किसी कमरे में जाकर बत्ती का बटन दबाकर बल्ब जला सकते हैं, अंधकार दूर हो जाएगा, परंतु हम उसका विभाजन नहीं कर सकते। हम एक रेखा खींचकर यह या वह नहीं कह सकते, इस रेखा के इस ओर मैं उज्याला रखूंगा और उस ओर अंधकार को रखूंगा। परंतु परमेश्वर ऐसा कर सकता है और वह कह सकता है कि यह गलत है और यह सही है। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 34 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, लिखा है कि वह लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी न हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थानों और अशेरा नाम मूर्तों को और खुदी हुई ढली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। मेरे मित्रों, अपने राज्य के 8वें वर्ष में योशिय्याह 16 वर्ष का था। उसने परमेश्वर की खोज आरंभ की। आज के आत्मिक अभियान और परमेश्वर के वचन में लौटना अधिकतर युवाओं के मध्य है, जबकि यह उन्हीं तक सीमित नहीं है, वे ही बहुसंख्यक हैं। मैं अपनी सभाओं में और संपूर्ण विश्व में इन युवाओं से भेंट करता हूँ, वे परमेश्वर के वचन में रुचि रखते हैं। योशिय्याह ने जब परमेश्वर का अनुसरण करना आरम्भ किया तब वह मात्र 16 वर्ष का था और यहूदा में धर्म सुधार लाने के समय उसकी आयु 20 वर्ष की थी। देखिए, जागृति सुधार लाती है। मेरे मित्रों, जैसा मैंने पहले कहा, आपके पाप क्षमा हो जाने पर आप अपने खाट उठाकर चलेंगे। जी हाँ, यदि आपका मन वास्तव में परिवर्तित हो गया है तो आप पापों से दूर चले जाएंगे। यदि आज जागृति आ जाए तो हमारी तलाक और यौन संबंधों की समस्या समाप्त हो जाएगी। हम एक महान परिवर्तन को देखेंगे। परमेश्वर यह कर सकता है। जी हाँ, वह कर सकता है और अति संभव है कि वह कर दे। परमेश्वर के वचन का यह भाग हमारे लिए महान प्रेरणा का स्रोत है। योशिय्याह एक निर्भीक धर्म सुधारक था। दक्षिण राज्य यहूदा को शोधन करने के पश्चात वह उत्तरी राज्य के कुलों में गया। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 34 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं, फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में जब वह देश और भवन दोनों को शुद्ध कर चुका, तब उसने असल्याह के पुत्र शापान और नगर के हाकिम मासेयाह और यहोआहाज के पुत्र इतिहास के लेखक योआह को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत कराने के लिए भेज दिया। ध्यान दीजिए, 26 वर्ष की आयु में योशिय्याह ने मंदिर का पुनरुद्वार आरंभ करवाया। उसने दादा मनश्शे और पिता आमोन के युग में रख रखाव न होने के कारण मंदिर की दशा दयनीय हो गई थी, उसे ठीक करना आरंभ किया। दूसरे इतिहास की पुस्तक 34 अध्याय के 9 पद में लिखा है, सो उन्होंने हिल्कियाह महायाजक के पास जाकर जो रुपया परमेश्वर के भवन में लाया गया था, अर्थात जो लेवीय दरवानों ने मनुष्यों एप्रेमियों और सब बचे हुए इसराइलियों से और सब यहूदियों और विन्यामिनों से और यरूशलेम के निवासियों के हाथ से लेकर इकट्ठा किया था, उसको सौंप दिया। मनुष्य और एप्रेम इसराइल के गोत्र थे। इस समय उत्तरी राज्य अशुरों की बंधुआई में जा चुका था। वहां केवल कुछ ही नागरिक शेष रह गए थे, ये गोत्र जिन्हें हम खोया हुआ कहते हैं। उस समय खोया नहीं था क्योंकि वे मंदिर के सुधार के लिए दान भेज रहे थे। मेरे प्रियो, अब मंदिर का सुधार हो चुका था और उन्होंने अद्भुत खोज की। हम देखते हैं मूसा की व्यवस्था मिली। दूसरे इतिहास की पुस्तक 34 अध्याय उसके 14 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वे उस रुपए को जो यहोवा के भवन में पहुंचाया गया था निकाल रहे थे, तब हिल्कियाह याजक को मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। मेरे मित्रों, उस समय व्यवस्था की प्रतियां नहीं थी। संभव है कि कुछ प्रतियां रही होगी, परंतु परमेश्वर का वचन खो गया था। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक 34 अध्याय उसके 15 और 16 पद में, तब हिल्कियाह ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्कियाह ने शापान को वह पुस्तक दी। तब शापान उस पुस्तक को राजा के पास ले गया और यह संदेश दिया कि जो जो काम तेरे कर्मचारियों को सौंपा गया था उसे वे कर रहे हैं। अब आप कहेंगे, मैं देख सकता हूँ कि यह आपका मार्ग है। निश्चय ही, परंतु मेरी नहीं, परमेश्वर का मार्ग है। उसका वचन उसके लिए महान महत्व का है। देखिए आगे क्या हुआ। दूसरे इतिहास की पुस्तक 34 अध्याय उसके 18 और 19 पद में लिखा है, फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया कि हिल्किय्याह याजक ने मुझे एक पुस्तक दी है। तब शापान ने उसमें से राजा को पढ़कर सुनाया। व्यवस्था की वे बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। मेरे मित्रों, वस्त्र फाड़ना गहरी भावनाओं को व्यक्त करता है। परमेश्वर के वचन को पहली बार सुनकर वह भौंचक्का रह गया, क्योंकि वह और उसकी प्रजा परमेश्वर की आज्ञाओं से बहुत दूर हो गए थे। तब हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 34 अध्याय उसके 20 और 21 पद को पढ़ते हैं। लिखा है, फिर राजा ने हिल्किय्याह शापान के पुत्र अहिकाम, मीका के पुत्र अब्दोन, शापान मंत्री और असायाह नाम अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि तुम जाकर मेरी ओर से और इसराइल और यहूदा में रहने वालों की ओर से इस पाई हुई पुस्तक के वचनों के विषय यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इसलिए भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा का वचन नहीं माना और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन में लौट आने पर जागृति आती है, अन्य कुछ नहीं जो जागृति लाए। हमारे आज के युग में क्या समस्या है? हम जागृति क्यों नहीं देख पा रहे हैं? कारण सीधा और साधारण है। कलीसिया ने परमेश्वर के वचन को त्याग दिया है। कलीसियाओं से हर प्रकार की युक्तियां और विधियां अपनाई हुई है। कुछ नहीं हुआ है। जागृति ऐसे नहीं आती है। जागृति तब ही आती है जब मनुष्य परमेश्वर के वचन में लौट आता है और खोजता है कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। यशिया कांप उठा था और जानना चाहता था कि परमेश्वर क्या करेगा। दूसरे इतिहास की पुस्तक 34 अध्याय उसके 22 और 23 पद में पढ़ते हैं, तब हिल्किय्याह ने राजा के और दूतों समेत हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे उसी बात के अनुसार बातें की। वह तो शल्लूम की स्त्री थी जो तोखत का पुत्र और हस्त्रा का पोता और वस्त्रालय का रखवाला था, और वह स्त्री यरूशलेम के नए टोले में रहती थी। उसने उनसे कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा उससे यह कहो। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, यह संदेश परमेश्वर की ओर से यशिय्याह के लिए था। दूसरे इतिहास की पुस्तक 34 अध्याय उसके 24 और 25 पद में आगे लिखा है कि यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा के राजा के सामने जो पुस्तक पढ़ी गई उसमें जितने शाप लिखे हैं उन सबों को पूरा करूंगा। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप जलाया है और अपने बनाए हुए सब वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़क उठी है और शांत न होगी। मेरे मित्रों, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार दंड देगा, परंतु यशिय्याह के लिए उसका व्यक्तिगत संदेश था। दूसरे इतिहास की पुस्तक 34 अध्याय उसके 26 से 28 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा के पूछने को भेज दिया है उससे तुम यूं कहो कि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर नवाया और उसकी बातें सुनकर जो उसने इस स्थान पर इसके निवासियों के विरुद्ध कही, तूने मेरे सामने अपना सिर नवाया और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है, इस कारण मैंने तेरी सुनी है। यहोवा की यही वाणी है, सुन, मैं तुझे तेरे पुरखाओं के संग ऐसे मिलाऊंगा कि तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर और इसके निवासियों पर डालना चाहता हूं उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना ना पड़ेगा। तब उन लोगों ने लौटकर राजा को यही संदेश दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर उन्हें दंड देगा, परंतु यशिय्याह के जीवन काल में नहीं। दूसरे इतिहास की पुस्तक 34 अध्याय उसके 29 से 31 पद में हम आगे पढ़ते हैं। तब राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को इकट्ठे होने को बुलवा भेजा और राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याचकों और लेवियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन को गया। तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसमें की सारी बातें उनको पढ़ करके सुनाई। तब राजा ने अपने स्थान पर खड़ा होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने पूर्ण मन और पूर्ण जीव से उसकी आज्ञाएं चेतावनियों और विधियों का पालन करूंगा और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। मेरे मित्रों, हमें सीधा सच्चा और स्पष्ट होना है। मेरे विचार में आज जागृति आ सकती है, परंतु सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन में लौट आना है और परमेश्वर की इच्छा जानना है कि वह हमसे क्या करवाना चाहता है। इसके पश्चात मेरे विचार में परमेश्वर के जनों में संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। ये जो आधे मन से आराधनालय में आते हैं जैसे हम करते हैं, इन्हें समाप्त करना होगा। परमेश्वर और संसार को एक साथ रखकर चलना नहीं है। दोनों नाव में पांव रख कर, कहने का मतलब है कि दो नाव में पांव रख कर कि आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, आप नदी पार नहीं कर सकते हैं, आप डूब जाएंगे। परमेश्वर के प्रति मन और जीवन का समर्पण स्पष्ट होना है। जब यह हो जाएगा तब परमेश्वर का आत्मा काम करने के लिए वाद्य होगा। मेरे मित्रों, अध्याय 35 में फसह के पर्व का उल्लेख है। उसकी पीढ़ी के लिए यह एक नया अनुभव था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि योशियाह ने मूसा की व्यवस्था के अनुसार विधि का पालन किया है। आइए अब हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 35 अध्याय उसके 16 से 19 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यूं उसी दिन राजा योशियाह की आज्ञा के अनुसार फसह मनाने और यहोवा की वेदी पर होम बलि चढ़ाने के लिए यहोवा की सारी उपासना की तैयारी की गई। जो इसराइली वहां उपस्थित थे उन्होंने फसह को उसी समय और अखमीरी रोटी के पर्व को 7 दिन तक माना। इस फसह के बराबर शमूएल नबी के दिनों से इसराइल में कोई फसह मनाया न गया था और न इसराइल के किसी राजा ने ऐसा मनाया जैसा योशियाह और याजकों लेवियों और जितने यहूदी और इसराइली उपस्थित थे उन्होंने और यरूशलेम के निवासियों ने मनाया। यह फसह योशियाह के राज्य के 18वें वर्ष में मनाया गया। मेरे प्रियो, फसह मसीह यीशु की मृत्यु का प्रतीक है। राष्ट्र को एक बात तो समझ में आ गई थी कि पापों के लिए मुक्ति की आवश्यकता है। देखिए, उन्हें फसह का ज्ञान तब हुआ जब उन्हें मूसा की व्यवस्था मिली। यह एक महान अवसर था। परमेश्वर ने कहा, इस फसह के बराबर शमूएल के दिनों में भी इसराइल में कोई फसह मनाया न गया था। परमेश्वर के वचन में लौट आने के इस महान काम का श्रेय योशियाह को है। अब हम उसकी मृत्यु को देखेंगे। ऐसे ईश्वर भक्त मनुष्य भी चूक जाते हैं, मनुष्य से चूक होती है। आइए देखें योशियाह की मृत्यु। दूसरे इतिहास की पुस्तक 35 अध्याय उसके 20 और 21 पद में हम पढ़ते हैं, इसके बाद जब योशियाह भवन को तैयार कर चुका तब मिस्र के राजा नको ने परात के पास के करकमिस नगर से लड़ने को चढ़ाई की और योशियाह उसका सामना करने को गया, परंतु उसने उसके पास दूतों से कहला भेजा कि हे यहूदा के राजा, मेरा तुझसे क्या काम? आज मैं तुझ पर नहीं उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूँ जिसके साथ मैं युद्ध करता हूँ। फिर परमेश्वर ने मुझसे फुर्ती करने को कहा है, इसलिए परमेश्वर जो मेरे संग है उससे अलग रह, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुझे नाश कर दे। परंतु यशिया ने उससे मुंह न मोड़ा, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला और नको के उन वचनों को न माना जो उसने परमेश्वर की ओर से कहे थे और मगीदो की तराई में उससे युद्ध करने को गया। मित्रों, हम देखते हैं कि यशिया को घर में ही रहना था, उसका इस युद्ध से कोई संबंध नहीं था, परंतु उसने युद्ध से दूर रहने से इनकार कर दिया। देखिए इसका परिणाम क्या हुआ। दूसरे इतिहास की पुस्तक 35 अध्याय उसके 23 से 25 पद में हम पढ़ते हैं, तब धनुर्धारियों ने राजा यशयाह की ओर तीर छोड़े और राजा ने अपने सेवकों से कहा, मैं तो बहुत घायल हुआ, इसलिए मुझे यहाँ से ले जाओ। तब उसके सेवकों ने उसको रथ पर से उतारकर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया और यरूशलेम को ले गए और वह मर गया और उसके पुरखाओं के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई और यहूदियों और यरूशलेमियों ने यशयाह के लिए विलाप किया और यिर्मयाह ने यशयाह के लिए विलाप का गीत बनाया और सब गाने वाले और गाने वालियां अपने विलाप के गीतों में यशयाह की चर्चा आज तक करती हैं और इनका गाना इसराइल में एक विधि के तुल्य ठहराया गया और ये बातें विलाप गीतों में लिखी हुई हैं। जी हाँ, यशयाह एक अच्छा और महान राजा था। उसने जागृति और परमेश्वर के अनुसरण में प्रजा की अगुवाई की थी। उसकी मृत्यु के कारण जागृति समाप्त हो गई। अब दक्षिणी राज्य यहूदा परमेश्वर से दंड पाएगा। मेरे मित्रों, अब हम देखेंगे अध्याय 36 में, जिसका विषय है यहूदा का बंदी बनाया जाना। जी हाँ, दक्षिणी राज्य यहूदा के दिन गिने हुए थे। यशयाह उस राष्ट्र का अंतिम अच्छा राजा था। उसके बाद आने वाले सब राजा बुरे थे, उनमें एक भी अच्छा राजा नहीं हुआ। उनके दुष्ट राज के कारण परमेश्वर का दंड यहूदा पर शीघ्र आया। परमेश्वर के प्रति उनके स्वभाव और राष्ट्र का विनाश लाने वाली घटनाओं का यहाँ पर संक्षिप्त विवरण दिया गया है। तो आइए हम देखें यहोआहाज का राज्य, दूसरे इतिहास की पुस्तक 36 उसके 1-3 पद में। दूसरे इतिहास की पुस्तक 36 अध्याय 1-3 पद। तब देश के लोगों ने यशयाह के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसके पिता के स्थान पर यरूशलेम में राजा बनाया। जब यहोआहाज राज्य करने लगा तब वह 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। तब मिस्र के राजा ने उसको यरूशलेम में राजगद्दी से उतार दिया और देश पर 100 किक्कार चांदी और किक्कार भर सोना जुर्माने में दंड लगाया। प्रियो, यशयाह के पुत्र यहोआहाज को मिस्र के राजा ने पद से उतार दिया। वह महादुष्ट था और 3 महीने ही सिंहासन पर बैठा। अब घटनाओं की गति बढ़ गई है। आगे देखेंगे यहोयाकीम का राज्य, दूसरे इतिहास के पुस्तक 36 अध्याय उसके 5-7 पद में हम पढ़ते हैं। जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उसने वह काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उस पर बाबेल के राजा नबुकदनेस्सर ने चढ़ाई की और बाबेल ले जाने के लिए उसको बेड़ियां पहना दी। फिर नबुकदनेस्सर ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बाबेल ले जाकर अपने मंदिर में जो बाबेल में था रख दिए। मेरे मित्रों, उसके राज्य में बाबेल के राजा ने आक्रमण किया। आगे हम देखते हैं कि यहोयाकीम का राज्य, दूसरे इतिहास की पुस्तक 36 अध्याय के 9 पद में लिखा है, यह यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और 3 महीने और 10 दिन तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उसने वह किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। मेरे प्रियो, वह अधिक समय राज नहीं कर पाया, वह सिंहासन पर रुक भी नहीं पाया। तब हम आगे देखते हैं सिदकियाह का राज्य, सिदकियाह यहूदा का अंतिम राजा था। दूसरे इतिहास की पुस्तक 36 अध्याय उसके 11-14 पद में हम पढ़ते हैं, जब सिदकियाह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था तो भी वह उसके सामने दीन न हुआ। फिर नबुकदनेस्सर जिसने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी उससे उसने बलवा किया और उसने हट किया और अपना मन कठोर किया कि वह इसराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर न फिरे। वरन सब प्रधान याचकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। मेरे मित्रों, हम देखते हैं इनके बंधुआई में जाने के बारे में। अब नबुकदनेस्सर फाटक पर दस्तखत नहीं देता है, वह शहर पनाह ढाकर यरूशलेम का ध्वंस कर देता है और यहूदा को बंधुआई में ले जाता है। इसका प्रतिवाद परमेश्वर देता है। दूसरे इतिहास की पुस्तक 36 अध्याय उसके 15 से 20 पद में हम पढ़ते हैं, और उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपने प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठड्डों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता न की। यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया, और क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बाबेल को ले गया। और कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम के शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। और जो तलवार से बच गए उन्हें वह बाबेल को ले गया, और फारस के राज्य के प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटों पोतों के अधीन रहे। मेरे मित्रों, अगला पद परमेश्वर के दंड का एक और कारण प्रकट करता है जो अति रोचक है। दूसरे इतिहास के पुस्तक 36 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। मेरे प्रियो, देखिए, परमेश्वर ने द्विमुखी उद्देश्य की पूर्ति की। जब परमेश्वर कोई काम करता है तब उसके मन में अनेक बातें होती है। सबसे पहले उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं का तिरस्कार किया था, वे दिए गए समय में जी रहे थे। परमेश्वर तो उन्हें 100 वर्ष पूर्व ही बंधुआई में भेज कर न्याय सम्मत ठहराता। मैं सोचता हूं कि हमारा देश तो दिए गए समय में नहीं जी रहा है। परमेश्वर कब तक हमारे पापों के प्रति सहनशील रहेगा? यहूदा राष्ट्र का समय आ गया था, अब कोई उपचार नहीं बचा था। ऐसा समय आता है कि जब कोई राष्ट्र इस दशा में आ जाए। मेरे प्रियो, मैं सोचता हूं कि हमारा देश इस समय के कितना निकट है। दूसरा कारण, इसराइल ने 490 वर्ष तक सप्त के दिन का पालन नहीं किया था। मेरे मित्रों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसराइल परमेश्वर से दूर हो गया और उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई में जाने दिया, लेकिन वह उन्हें भूला नहीं। वह उनकी पुकार को अपने समय के अंतराल में सुना और फिर वह वहां से उन्हें छुड़ा कर लाता है। मेरे मित्रों, आज के अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है। प्रभु आप सबके साथ हो।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414, और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
वंदे प्रभु, वंदे मसीह, शात शात वंदना, वंदे प्रभु, वंदे प्रभु, वंदे मसीह। प्रभु